ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू की प्राचीन संपदाओं के पुनर्निर्माण कार्य का किया अवलोकन। एमसीसी को आवश्यक परिमार्जन के पश्चात पारित किए जाने की आवश्यकता पर अध्यक्ष प्रचंड ने दिया जोर। दांग की तुलसीपुर उप महानगर पालिका के जीतपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। और थाईलैंड में एक थाई सैनिक द्वारा चलाई गई अंधाधुंध गोलीबारी में 12 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू में पुनर्निर्माण किए जा रहे रानी पोखरी, धरहरा काष्ठ मंडप, दरबार हाई स्कूल और बसंतपुर दरबार का आज मुआयना किया। मुआयने के दौरान राष्ट्रपति भंडारी ने गोरखा भूकंप से क्षतिग्रस्त हो चुकी ऐतिहासिक संपदाओं के पुनर्निर्माण की प्रगति देखकर खुद को उत्साहित बताया और कहा कि विभिन्न कालखंड में निर्माण की गई ऐतिहासिक संपदाएं नेपालियों की धरोहर हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि एमसीसी सहयोग देश के हित में है या नहीं, इस बात को सुनिश्चित करके ही कदम बढ़ाया जाना चाहिए। आज काठमांडू में कांतिपुर क्रांतिक को संबोधित करने के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए एमसीसी विरोध और विवाद का मुद्दा बन चुका है। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर आवश्यक परिमार्जन के बाद ही इसे पास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जब मैं प्रधानमंत्री था उस दौरान भी एमसीसी की बात आई थी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि वे एमसीसी के आलोचक और विरोधी नहीं हैं। दांग के अलग अलग स्थानों में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दांग की तुलसीपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 जीतपुर में आज गिरी बिजली की चपेट में आने से स्थानीय 51 वर्षीय लक्ष्मी आचार्य और 6 वर्षीय सृष्टि चौधरी की हुई मौत की जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर ने दी है। दांग की ही घोराही उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 11 में गिरी बिजली से झुलसकर वहीं के 8 वर्षीय तारा बहादुर पुरी की मौत हो गई। कैदी को रिहा करवाने देने का प्रलोभन देकर 42 लाख रुपए ठगी करने वाले काठमांडू कीर्तिपुर में रह रहे 42 वर्षीय टंक बहादुर राणा मगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मगर का स्थायी पता धनकुटा की शहीद भूमि नगर पालिका वार्ड नंबर 7 बताया गया है। राजस्व चुहावट के मामले में नक्खू जेल में रहे रमेश दाहाल को जमीन की जमानत पर रिहा करवा देने का दाहाल के पिता को भरोसा दिलाकर लिखित कारनामे के साथ 42 लाख रुपए ठगी करने वाले गिरोह में शामिल मगर को आज काठमांडू के बबर महल से गिरफ्तार किया गया। चीन की वुहान से वापस लाए जा रहे नेपाली नागरिकों को रखने के लिए भक्तपुर की खरीपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण के 2 भवनों को खाली किया गया है। क्वारंटाइन के लिए 2 भवनों को खाली किए जाने की जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरण खरीपाटी के सह निर्देशक केशव राज ओली ने दी है। बता दें कि नेपाली सेना के प्राविधिक स्वास्थ्य मंत्रालय सहित की टोली ने अध्ययन के पश्चात उक्त जगह का चुनाव करने के लिए प्रतिवेदन सौंपा था, जिसके बाद सरकार ने भक्तपुर की खरीपाटी स्थित प्राधिकरण में आइसोलेशन वार्ड के रूप में क्वारंटाइन रखने का निर्णय लिया है। इस आइसोलेशन वार्ड में 124 लोगों को रखने की व्यवस्था की गई है। यद्यपि खरीपाटी में क्वारंटाइन रखने के सरकार के निर्णय का स्थानीय वासियों ने विरोध किया है। स्थानीय वासियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार बस्ती की 2 किलोमीटर की दूरी में क्वारंटाइन रखना चाहिए, परंतु सरकार बस्ती के बीचों बीच चीन से लौट रहे नेपाली नागरिकों को रखने की व्यवस्था कर रही है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के थाहैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरह्या
हो र दाइ।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाइ।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना ने कहा कि देश में आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए व्यवसायिक और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। पर्वत के गुप्तेश्वर बहुमुखी कॉलेज के 28वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में अध्यक्ष तिमिल सिन्हा ने कहा कि युवाओं को स्वदेश में ही रोजगारी और आर्थिक सबलीकरण रूपी शिक्षा की आवश्यकता है। साथ ही अध्यक्ष तिमिल सिन्हा ने कहा कि शैक्षिक क्षेत्र में दिख रही समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से शिक्षक का चुनाव किया जाना चाहिए और शिक्षा क्षेत्र को राजनीति से दूर रखना चाहिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट ने कहा कि सरकार जल्द ही कैलाली की लमकी चूहा में डूडेझारी औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करेगी। आज डूडेझारी में अनुगमन के क्रम में मंत्री भट्ट ने कहा कि उद्योग मंत्रालय को स्थानीय जनता की पहुंच तक लाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना में सहभागी श्रमिकों की संख्या 144,144 हुई है। इसकी जानकारी सामाजिक सुरक्षा कोष ने दी है। कोष में सूचीकृत होने वाले रोजगारदाताओं की संख्या 12,135 पहुंची है, जबकि कोष में सबसे अधिक बागमती प्रदेश के श्रमिक सूचीकृत हुए हैं। बता दें कि कोष मुख्यतः दवा खर्च, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा और वृद्धावस्था सुरक्षा योजना आदि का संचालन करती आ रही है। सुदूर पश्चिम प्रदेश की पहाड़ी जिलों में आज सुबह दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 5:15 पर 3.7 रेक्टर स्केल के और 6:46 पर 5.3 रेक्टर स्केल का भूकंप के झटके महसूस किए जाने की जानकारी भूकंप मापन केंद्र सुरखेत की टेक्निकल असिस्टेंट चंदा शाह ने दी। पहले भूकंप का केंद्र बिंदु बझांग और दूसरे का केंद्र बिंदु भारत के उत्तराखंड प्रदेश की चमोली के आसपास होने की जानकारी दी गई है। यद्यपि भूकंप के कारण कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत तनहू के रिमालनी में ट्रक और बस एक आपस में टकराने से बस चालक सहित 19 यात्री घायल हुए हैं। घायलों का इलाज डुमरे स्थित अस्पताल में चल रहा है। इसकी जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय तनहू के प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछाने ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के उत्तर पूर्व में स्थित नकोन रेडचासी में शहर में एक जवान द्वारा की गई गोलीबारी में कम 12 लोगों की मौत हुई है। इस जगह को कोराट के नाम से भी जाना जाता है। बीबीसी थाई ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता से बात की है, जिनका कहना है कि जफरा पंत थोमा नामक जूनियर अफसर ने सैन्य कैंप से हथियार चुराने से पहले अपने कमांडिंग अफसर पर हमला किया था। इसके बाद उसने उत्तर पूर्व बैंकॉक के शहर के शॉपिंग सेंटर और बौद्ध मंदिर पर गोलीबारी की। संदिग्ध हमलावर के अभी भी घटनास्थल पर होने की आशंका है। स्थानीय मीडिया के फुटेज में दिख रहा है कि संदिग्ध हमलावर अपनी कार से शॉपिंग सेंटर के बाहर निकल रहा है और लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। कई फुटेज में इमारत के बाहर आग दिखाई दे रही है। प्रशासन ने शॉपिंग सेंटर को सील कर दिया है और संदिग्ध को ढूंढ रही है। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे घरों में रहें। संदिग्ध के हमले का क्या मकसद था, यह अभी साफ नहीं हुआ है। हमले के दौरान संदिग्ध सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहा था। एक पोस्ट में वो पूछ रहा था कि वे कहां सरेंडर करें। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू की प्राचीन संपदाओं के पुनर्निर्माण कार्य का किया अवलोकन। एमसीसी को आवश्यक परिमार्जन के पश्चात पास किए जाने की आवश्यकता पर अध्यक्ष बच्चन ने दिया जोर। दांग की तुलसीपुर उपमहानगर पालिका की जीतपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की हुई मौत और थाईलैंड में एक थाई सैनिक द्वारा चलाई गई अंधाधुंध गोलीबारी में 12 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।